सर सैलरीड लोग हैं, हर महीने सर हज़ारों रुपया टैक्स कटवा रहे हैं, तो रमज़ान में फिर ये ज़कात जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो इस्लामिक स्टेट में सर इसकी परमिशन है कि पहले टैक्स भी दे दें फिर ज़कात भी हमारे काट लें।
देखिए, जहाँ तक अल्लाह ताला का मामला है, उन्होंने तो ये फैसला कर दिया है कि हुकूमत को चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो ज़कात है।
जी जी
यानी अल्लाह ताला का फैसला टैक्सेशन के बारे में ये है। दो ही चीज़ें हैं जो एक मुसलमान हुकूमत के लिए उसके रेवेन्यू का ज़रिया बनती है, एक ज़कात, और ज़कात आपके यहाँ पैदावार पर भी होती है, वो 5, 10 और 20% है। ज़कात माल और बचत पर भी होती है, वो 2.5% है। ज़कात माल मवेशी पर भी होती है, उसका अलग एक ज़ाबता और कायदा है। एक ज़कात, और दूसरे जो चीज़ें रियासत के पास हैं, जो इज्तमाही मलकियत में हैं, उनकी आमदनी, जैसे मसलन ज़मीन है। तो आपके इलम में होगा कि सैयदना उमर के ज़माने में जो पूरी ज़मीन थी उसके ऊपर किराया आयद कर दिया गया था, जिसको अरबी में खराज कहा जाता है। ये दो ही बुनियादी ज़राए हैं, और दोनों बड़े वाज़े तरीके से टैक्सेशन का एहतमाम करते हैं। यानी मैं सिर्फ ताबीर मुस्तार ले रहा हूँ, अल्लाह ताला ने तो ज़ाहिर है कि ये लफ्ज़ भी छोड़ दिया, इसलिए कि इसके अंदर एक जबर का अंसर पाया जाता है। तो ये हम अपनी आमादगी से, मर्जी से देते हैं, और रियासत को बहरहाल हक है कि वो ये ले। अब हमारे यहाँ इसका शऊर नहीं है, यानी उलमा के यहाँ भी इसका वाज़े शऊर नहीं है, इसी तरीके से हुक्मरानों के यहाँ भी नहीं है। टैक्सेशन का एक निज़ाम जो दुनिया में राइज है, उसकी अपनी एक तारीख है। पहले बादशाह सलामत फैसला कर दिया करते थे, फिर उसके बाद तहरीकें चलीं तो मालूम हुआ कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब पार्लियामेंट कानून साजी कर देती है, उसमें कुछ पता नहीं होता किस बजट में क्या लाद देंगे। तो ये एक इस्तिब्दादी अमल है जो हमारे यहाँ चला आ रहा है, इसमें वो चला आ रहा है। उसके साथ कुछ मुसलमानों को ज़कात भी कभी कभी याद आ जाती है, तो वो दोनों इस तरह चलते रहते हैं।
सर ये
तो, हुकूमत जो कुछ कर रही होती है वो हमसे पूछ के नहीं करती। यानी मेरे नज़दीक तो अगर फिलवाके वो इस बात के ऊपर गौर करें तो ये जितने इस वक्त आपके मसाइल पैदा होते हैं टैक्सेशन के, ये खत्म हो जाए सारे के सारे।
जी जी।
आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने बड़े बड़े महकमे आपको बनाने पड़ते हैं ये मुतय्यन करने के लिए। ज़ाहिर है कि उसमें होता क्या है, महकमों को ये टास्क दिया जाता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना है, और इंसान किस मुकाम पर खड़ा होता है कि मैंने इस जुल्म से बचना है, ये नफ्सियात वजूद में आती है। अब आप ज़कात में आ जाइए तो वहाँ क्या है, वहाँ ये है कि आप सिर्फ रियासत के सामने जवाबदेह नहीं है, आप असल में उस एक एक पाई के लिए खुदा के सामने जवाब, तो आपका महर्रे की बिल्कुल तब्दील हो जाता है
और अच्छा। लोग निकालते हैं बगैर जबर के निकालते हैं।
उसके बाद आपका ये एतमाद कि इसकी शरहें मेरे परवरदिगार ने मुकर्रर की है, किसी पार्लियामेंट ने मुकर्रर नहीं की, और सरमाए को ये तहफ्फुज कि ये नहीं है कि हर तीसरे दिन कभी ऊपर चले गए और कभी नीचे चले गए, ये परवरदिगार ने तय कर दिया है कि इतना आपने हुकूमत के हक के तौर पर, माशरे के हक के तौर पर देना है। यानी इस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है कि इतनी चीजें उसके गिर्द जमा हो जाती हैं कि बहुत कम इसका इम्कान रह जाता है कि लोग करेंगे फिर भी। यानी इंसान इंसान है, वो हरम में भी जुर्म कर लेता है, लेकिन बहुत कम रह जाता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, आपके पास मादनियात हैं, आपके पास दूसरे ज़खायर हैं, तेल निकल आया उसकी आमदनी है, ज़ाहिर है कि वो ज़रिया बनती है। सिर्फ ज़मीन के किराए पर ज़रा गौर कीजिए, यानी ज़मीन तो ऐसी चीज़ नहीं ना कि आपने छुपा के रखी होती है भाई, एक मरले में भी घर बनाया हुआ है, एक प्लाजा भी खड़ा किया हुआ है, या कोई भी चीज़ है, जब उस पर आप खराज आयद कर देते हैं तो मुतय्यन है, बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल सकता। मिसाल के तौर पर यूएस में आपको आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होता है, तो वो इतना मुतय्यन होता है कि उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। यानी एक मार्केट वैल्यू है, उसके लिहाज से आप आयद कर देते हैं एक परसेंटेज तय करके। उसमें जो डिस्क्रिप्शन है या जो महकमों की मुदाखलत है या जो आपके कारोबार के अंदर मुदाखलत है, या आपको कभी झूठा करार देना, कभी सच्चा करार देना, उसके इम्कान खत्म हो जाते हैं। और आप देखें कितनी वसी बुनियाद मिलती है, इसलिए कि कोई काम भी आप ज़मीनी पर करेंगे ना, यानी अगर एक खोखा भी लगाना है तो ज़मीनी पर लगाएंगे, घर भी बनाना है तो ज़मीनी पर बनाएंगे।
बिल्कुल सही है।
इसी तरीके से आपने काश्त करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्लाजा खड़ा करना है, तो जो उस ज़मीन की वैल्यू है उसका एक इदराक करके आप उस पर आयद कर देते हैं, और वो भी ज़ाहिर है कि एक उसूल के तौर पर लागू हो जाता है, उसमें मुदाखलत कम हो जाती है। तो रेवेन्यू के ये ज़राए हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने, यानी उन चीज़ों के अलावा जो अल्लाह की नेमतें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, ज़मीन और उसके खजाइन, इसके बारे में इस्लामी उसूल ये है कि ये इज्तिमा के पास होते हैं। इनको आप जब खरीदते या फरोख्त करते हैं तो ये आप सिर्फ उनका इस्तेमाल खरीदते या फरोख्त करते हैं, असलन ये इज्तिमा की मलकियत है। इसलिए इन पर खराज आयद करना, इनका किराया लेना, यही वो तरीका है जो सैयदना उमर ने इख्तियार किया था। تو میرے نزدیک اگر لوگ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو شاید وہ بہت سے مسائل جو اس وقت لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں. جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک بھائی آپ کی حکومت ہے, اس نے ٹیکس لینا ہے, نہیں دیں گے تو جیل میں جائیں گے.
لیکن یہ جب تک یہ نہیں ہے, آپ جو فرما رہے ہیں ان کا جو کوشچن ہے اس میں پریکٹیکلی, اب یہ جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں, تو کیا یہ اپنے ٹیکس اور زکوٰۃ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا حق تھا, اس نے لے لیا. آپ نے اگر طے کر لیا ہے کہ یہ حکومت نے جو حق لیا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنی ایک میری زکوٰۃ بنتی تھی یا زیادہ ہے, تو آپ بری ذمہ ہیں.